जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज विहारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय गोपी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज विहारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30 श्लोक संख्या 22 प्रचेतसः उचो नमः नमः क्लेश विनाशनाय निरूपित उदार गुण आव्ययाय मनः वचः वेग पुरः जवाय सर्वाक्ष मार्गैः अगता अध्वने नमः प्रचेतसः उचुः नमो नमः क्लेश विनाशनाय नमो नमः क्लेश विनाशनाय ನಿರೂಪಿತೋದಾರಗುಣಾವ್ಯಯಾಯ ನಿರೂಪಿತೋದಾರಗುಣಾವ್ಯಯಾಯ ಮನೋವಚ ವೇಗ ಪುರೋಜವಾಯ ಸರ್ವಾಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೈರಗತಾಧ್ವನೇ ನಮಃ ಸರ್ವಾಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೈರಗತಾಧ್ವನೇ ನಮಃ ಪ್ರಚೇತಸಾವುಚು ಪ್ರಚೇತಾವನ್ನೆ ಕಹ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಕ್ಲೇಶ ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ವಿನಾಶನಾಯ ದೂರ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ನಿರೂಪಿತ ನಿರ್ಣಯ ಉದಾರ ಉದಾರ ಗುಣ ಗುಣ ಆಹಯಾಯ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಮನಃ ಮನ್ಕಾ ವಚಃ ವಾಣಿ ಕಾ ವೇಗ ಚಾಲ್ ಪುರ ಸಾಮ್ನೆ ಜವಾಯ ಜಿಸ್ಕಿ ಗತಿ ಸರ್ವಾಕ್ಷ ಸಭಿ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗೈ ರಾಸ್ತೋ ಸೆ ಆಗತ ಅದೃಶ್ಯ ಅಧ್ವನೆ ಜಿಸ್ಕಾ ಮಾರ್ಗ ನಮಃ ಹಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಅನುವಾದ ಔರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎ ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವಿದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ದ್ವಾರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಪ್ರಚೇತಾವನ್ ನೆ ಕಹಾ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಆಪ್ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕ್ಲೇಶೋ ಕೋ ಹರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೇ ಆಪ್ಕೆ ಉದಾರ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ತಥಾ ಪವಿತ್ರ ನಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರದ ಹೇ ಇಸ್ಕಾ ನಿರ್ಣಯ ಪಹಲೆ ಹೋ ಚುಕಾ ಹೇ ಆಪ್ ಮನ್ ತಥಾ ವಾಣಿ ಸೆ ಭೀ ಅಧಿಕ ವೇಗ ಸೆ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಆಪ್ ಇಂದ್ರಿಯೋ ದ್ವಾರಾ ನಹೀ ದೇಖ್ ದೇಖ್ ಇಂದ್ರಿಯೋ ದ್ವಾರಾ ನಹೀ ದೇಖೆ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಅತಃ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ವಾರಂಬಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರೂಪಿತ ಶಬ್ದ ಜಿಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಅರ್ಥ ಹೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ನಿಕಾಲಾ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೇ ಈಶ್ವರ ಕೋ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಾ ತೋ ಕೋಯಿ ಶೋಧ ಕರ್ನಿ ಹೋತಿ ಹೇ ಔರ್ ನಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ನಿ ಶೋಧ ಕರ್ನಿ ಹೋತಿ ಹೇ ನಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಕರ್ನಿ ಹೋತಿ ಹೇ ವೇದೋ ಮೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ರೂಪ ಸೆ ಸಬ್ ಕುಚ್ ದಿವ್ಯ ದಿಯಾ ಹುವಾ ಹೇ ಸಬ್ ಕುಚ್ ದಿಯಾ ಹುವಾ ಹೇ ಅತಃ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೇ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ ವೇದೋಂ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನಾ ಪೂರ್ಣತಃ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಹೋತಾ ಹೇ ವೇದೋಂ ಕಾ ಕಥನ್ ಹೇ ಅಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನಭವೇದ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೈ ಹಮಾರಿ ಕುಂಠಿತ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ತಥಾ ಲೀಲಾಂ ನಹಿ ಸಮಝಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜಿಹ್ವಾದೋ ಸ್ವಯಮೇವೆ ಸ್ಮೃತ್ಯದಃ ಜಬ್ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಇಂದ್ರಿಯೋಂ ಕೋ ಲಗಾತಾ ಹೇ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತ ಕೆ ಸಮಕ್ಷ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟ್ ಹೋತೆ ಹೇ ಯಹಿ ನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಣಯಕ ವೇದ ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೇದ ವಿಧಿ ಹೇ ವೇದ ಯಹ ಭೀ ಸೂಚಿಕ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ನಾಮೋಂ ಕಾ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸೆ आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। हम भगवान के पास मन या वाणी के वेग से नहीं पहुंच सकते, हाँ, किंतु यदि हम भक्ति में लगे रहें तो उसके पास सरलता से तथा तेजी से पहुंच सकते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान द्वारा उन तक हमारे पहुंचने की अपेक्षा परमेश्वर भक्ति से आकृष्ट होते हैं और वे हमारे पास अधिक शीघ्र से पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा है कि वे ज्ञान की सीमा तथा विचार की सीमा से परे हैं, फिर भी उनकी अहेतु की कृपा से उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार वे अपनी अहेतु की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य विधियों प्रभावशाली नहीं होती। ओम अज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै। प्रार्थना में पहला श्लोक है। अभी तक हमने भगवान प्रचेताओं के लिए उपदेश भगवान के द्वारा हमने वो सुना, और पिछले कल वाले श्लोक में हमने सुना कि किस प्रकार मैत्रेय वर्णन करते हैं कि वो प्रचेताएँ गदगद होके इस प्रकार की प्रार्थना उच्चारण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेकों लीलाएँ हैं, अनेकों कथाएँ हैं, अनेकों प्रसंग हैं भक्त और भगवान के बीच में, लेकिन ये सारे प्रसंग सारे कथा का सार क्या है? सार है प्रार्थना, प्रेयर्स। लेकिन हमारी जड़ बुद्धि होने के कारण हम जब भागवत पढ़ते हैं, जब कहानी आता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। जब प्रार्थना आता है पेजेस घुमा दो, अरे यही चीज़ बार बार आता रहता है। हाँ, आप प्रकृति से परे हो, आप ही सृष्टिकर्ता हो, आपसे ही प्रलय होता है, आपसे ही पालन होता है, आप ही यही हो, तो हर एक प्रार्थना ऑलमोस्ट एक ही जैसा लगता है, तो थोड़ा सा बोरिंग लग जाता है। लेकिन असलियत में ये मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि के कारण हम ये कथा जब आता है तो स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रार्थना होता है तो उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन असलियत में सारे कथाओं का सार है प्रार्थना। भागवतम इज़ ए बुक ऑफ प्रेयर्स, बुक ऑफ स्टोरीज, स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो कथा का सार क्या है, उस प्रसंग का सार क्या है, ये प्रार्थना। तो इसलिए भागवतम के हर एक कथा के अंत में प्रार्थना आता है, हर एक स्टोरी के, हर एक प्रसंग के अंत में प्रार्थना आता है। इसलिए ये प्रार्थनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे कथा का अंत में प्रार्थना क्यों दिया गया, ताकि आप ये सब सुनने के द्वारा आपके हृदय में क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति भावना उत्पन्न होना चाहिए। नचा भावयदा शांति, भगवान के प्रति भावना जब तक नहीं उत्पन्न होता है तब तक शांति नहीं है, यानी सौख्य नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए ये प्रार्थना मतलब क्या है, प्रार्थना उस भक्त का भगवान के प्रति जो भावना है उसको बहिरंगिक रूप में व्यक्त किया गया है। लेकिन जब जड़ बुद्धि के द्वारा देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सारे प्रार्थना एक ही जैसा है, ऐसा लग सकता है बहिरंगिक दृष्टिकोण से, लेकिन उसके पीछे बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति हर एक भक्त का एक विशेष संबंध होता है। फ्रॉम द आईज ऑफ कृष्णा एवरी वन इज स्पेशल फॉर हिम। भगवान के दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति, हर एक भक्ति नहीं, हर एक जीव खास है, खास मतलब स्पेशल है, एक अनोखा संबंध है भगवान का। जैसे हम भगवान को देखते हैं तो हमारी दृष्टिकोण से उसका खास दिखाई नहीं पड़ते। जैसे सभी बच्चों के लिए माँ एक ही जैसा है, एवरीबडी हैज़ गॉट मदर, लेकिन जब माँ के दृष्टिकोण से हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ एक विशेष संबंध रहता है, तो वैसे ही भगवान के दृष्टिकोण में हर एक भक्त विशेष है, क्योंकि हर एक भक्त के साथ वो विशेष संबंध बना के रखते हैं। तो उनके प्रति विशेष आदान प्रदान रहता है. वो आदान प्रदान इसलिए है क्योंकि उनके हृदय में विशेष प्रकार की भावना है. और ये प्रार्थना ये उन भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भावना का बहिरंगिक प्राकट्य है. अपनी वचनों के द्वारा भगवान के प्रति भावना को प्रकट कर रहे हैं. तो ऐसा है, भावना अलग है भगवान के प्रति अलग अलग लोगों का, अलग अलग भक्तों का, तो प्रार्थना भी अलग अलग होना ही चाहिए. भले ही एक ही प्रकार का शब्द है लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ एक विशेष टेक्चर रहता है. भले ही एक ही ऐसा चीज़ है, रंग एक ही है, लाल कलर है, लेकिन वो भी लाल बहुत प्रकार का है. उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्स्चर, उसको हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं. हाँ, देयर आर सो मेनी शेड्स विद इन इट. हाँ, सो मेनी शेड्स विद इन रेड. सभी लाल है, जैसे इवन अभी भी ब्रह्मचारी लोग इधर बैठे हैं, लाल कपड़ा पहने हैं, लेकिन सबका लाल कपड़ा है लेकिन फिर भी अलग अलग रंग है, अलग अलग शेड है. तो वैसे ही सारे प्रार्थना बहिरंगी दृष्टिकोण से देखा जाए एक ही जैसा लगता है, लेकिन उनमें ऐसे देयर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स. जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, वो उसका एक विशेष महत्व है, उसका विशेषता है उसके अंदर. गजेंद्र प्रार्थना है, उसके अंदर विशेषता है. और भीष्मदेव की प्रार्थना है, वो भी इसका विशेषता है. वैसे प्रचेताओं की प्रार्थना में उनका विशेषता है. लेकिन वो सारे प्रार्थना इकट्ठा पेज बाय पेज रखेंगे, उसमें नमस्य पुरुषम त्वाद्यमेश्वरम प्रकृते परम नलक्षम सर्वभूतानाम नलक्षम, आप अपने इंद्रियों के द्वारा आपको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वही बात को इधर प्रचेता भी बता रहे हैं. हाँ, गजेंद्र भी वही बताते हैं. हाँ, वैसे भीष्मदेव भी बताते हैं कि मेरा मन आपकी चरण कमलों में हमेशा रहे, मैं अभी तक बहुत ही कार्यों में मग्न हूँ. तो सारे प्रार्थना एक ही जैसे लग सकता है लेकिन उसके अंदर अंतर है. लेकिन भले ही अंतर है, ये प्रार्थना जब किया जाता है, भक्त लोग करते हैं या भागवतम के प्रार्थना में, उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो फॉर्मेट को हमको जानना चाहिए क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है, सबसे पहला प्रार्थना में नमः ये शब्द आता है, नमस्ये पुरुषम. ये नमः शब्द से ही सारे प्रार्थना शुरू होता है. ये नमः शब्द के द्वारा क्या सूचित कर रहे हो भक्त, भगवान के प्रति बोल रहे हैं, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपका शरणागत होता हूँ, मैंने आपकी वाणी उपदेश मैंने सुन लिया है, तो सुनने के बाद मुझे क्या लेना चाहिए, माम एकम शरणम व्रजा. मैंने अभी तक आपका सुना है, नष्टो मो स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तवा, यानी मैं आपका शरण लेता हूँ. तो भगवान की वाणी सुनने के बाद उनका शरण लिया जाता है. तो सबसे पहला नमः, क्योंकि जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेते तब तक उनका गुणगान करने का क्षमता भी प्राप्त नहीं होता है. तो ये नमः शब्द मंगलाचरण को सूचित करता है, और साथ साथ में ये भी सूचित करता है कि ये भक्त शरणागत होकर भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहा है. असलियत में भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आपका गुणगान करने का क्षमता प्रदान कीजिए, क्योंकि भगवान का शरणागत हुए बिना भगवान का गुणगान नहीं किया जा सकता है. यही बात इस पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने पांडित्य के द्वारा या अपने मन और वचस शक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते. जैसे उपनिषद बताता है कि ना आत्म प्रवचन, फर्स्ट लाइन, नायम आत्म प्रवचने लभ्यो न मेदशा न बहुनाश्रुते न यम ये वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यात्म विरुणते तनुम स्वाम. नायम आत्म प्रवचने न लभ्य, बड़ा बड़ा वाक्याओं व्याख्याओं के द्वारा अपनी वाणी की और बुद्धि की क्षमता के द्वारा नायम आत्म प्रवचने न लभ्य न मेदशा, न बहुत सारा बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, मैं प्रयोगशाला में जाके वो करूँगा, मैं वेदों को अपनी बुद्धि के द्वारा समझूंगा उसको करूँगा, नहीं, नायम आत्म प्रवचने लभ्यो न मेदशा, ना मेदश शक्ति के द्वारा, न भुना श्रुते न, मैं तो सारे वेदों को जानता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को जान लिए, भगवान को प्राप्त किए. तो ये बहुत विरोधात्मक चीज़ें हमको ऐसा लगता है. जैसे भगवान बताते कि वेदेश्च सर्वे रहमे वेद्यो, वेदों से भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को जानना चाहिए. और जगह दूसरा बताया गया कि ब्रह्म संहिता में वेदेशु दुर्लभम. अरे ऐसे कैसे, एक जगह वेदेशु दुर्लभम, दूसरा जगह वेदेश सर्वे, वेदेश सर्वे हमें वेद्या, सारे वेदों से मुझे ही प्राप्त किया जा सकता है. ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस. तो तो कोई भी शास्त्र को अगर समझना है तो जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत के अनुसार नहीं समझेंगे तब तक इस प्रकार का विरोधात्मक चीज़ें नजर आएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हमेशा ये परस्पर विरोधास्पद बातें शास्त्रों में नजर आते हैं। एक जगह वेदों से भगवान को जानना चाहिए, जाना जा सकता है, दूसरी जगह वेदों से नहीं जान सकते हो, अरे कैसे समझेंगे? इसका मतलब क्या है? वेदों से भगवान को जाना जा सकता है, इसका मतलब क्या है? वेदों को जानने के बाद अगर भगवान को नहीं जानते हो आप वेदों को नहीं जानते हो। और दूसरे शब्दों में, मैं वेद तो पढ़ रहा हूं लेकिन भगवान को क्यों नहीं जान पा रहा हूं? क्योंकि भगवान का कृपा प्राप्त नहीं है। वो भगवान का कृपा क्यों प्राप्त नहीं? क्योंकि आप शरणागत नहीं हो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रेयर्स का। सबसे पहला शरणागति, सरेंडर टू कृष्णा, एंड देन प्रेयर कम्स आउट। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज की घटना में, जैसे भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज के अंदर क्या हुआ? मैं उनको प्रार्थना करूंगा करके उनका इच्छा उत्पन्न हुई। अरे छोटा सा बच्चा, 5 साल का आयु का अच्छा कैसे प्रार्थना करें? उनके पास इतना सुंदर शब्द कहाँ से आएंगे? तो वो भी भगवान की कृपा से आएंगे। तो उनका इच्छा तीव्रता की जो इच्छा देख के उन्होंने, जैसे उन्होंने भगवान प्रकट हुए प्रणाम किया तो भगवान ने क्या किया? अपने शंख को अपने गाल में स्पर्श किया। तो तब उस छोटे से ध्रुव महाराज के अंदर इतना वचस शक्ति आ गया ताकि वो भगवान का गुणगान कर सके। तो ये शरणागति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पांडित्य के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, बल्कि शरणागति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। जयस भाई, तो ये सबसे पहला चीज रहता है प्रार्थना में, फर्स्ट इज शरणागति। और दूसरा चीज क्या रहता है? तो जैसे शरणागत हो भगवान का गुणगान करते, आप इतने महान हो, आप सृष्टि का कारण हो, आपके वजह से सब कुछ होता है, देन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड विल बी देयर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रेयर्स का। सबसे पहला शरणागति, बाद में भगवान का मणिमा। और तीसरा चीज क्या रहता है? वो है कि मेरी अयोग्यता, आपको प्राप्त करने की अयोग्यता। ये भक्त हमेशा प्रकट करता है कि आप इतने महान हो, आपको जानना मेरे से असंभव है। खत्म पश्ये मही स्त्री, जैसे कुंती महारानी बताती है कि मैं तो एक स्त्री हूं, अतः परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कतम पश्यमि स्त्रिया। हे भगवान, आप बड़े बड़े परमहंसों को शिक्षा देने के लिए आप अवतरित होते हो और मैं तो एक साधारण सा स्त्री हूँ, तो मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ? हाँ, तो हमारी अयोग्यता को प्रकट किया जाता है, या उस भक्त अपने आप को अयोग्य समझते हुए दीन अवस्था को प्रकट करता है। ये तीसरा चीज़ रहता है प्रार्थना में। और एक चौथा चीज़ क्या रहता है प्रार्थना में? कि मेरी इच्छा क्या है। जैसे कुंती महारानी में क्या बोलती थी कि आप अभी जा रहे हो, तत्पदय रंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित ही। ये सारा पृथ्वी जो है ये स्वलक्षण विलक्षित ही, इतना सुंदर क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आपकी चरण कमल इस पृथ्वी में था, इसलिए दिखाई पड़ रहा था। इतना सारा सब्जी सब उग रहा है इधर, हाँ धान वगैरह सब कुछ समृष्ट रूप में इस जगत में इसलिए है क्योंकि आपकी उपस्थिति, आपकी चरण कमल पृथ्वी पे है। अगर आप जा रहे तो हमारा क्या होगा, इसलिए आप जरा रुकिए, कुछ समय के लिए तो रुकिए। तो ये निवेदन है। तो ये भक्त का अंत में एक निवेदन रहता है कि आप जिस प्रकार विष्णुदेव प्रार्थना करते हैं कि आपका मेरा मन आपके चरण कमलों में हमेशा रहे, जैसे गजेंद्र प्रार्थना करता है, ये जो मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ अभी का दुख का निवारण कीजिए सबसे पहला। तो अलग अलग प्रार्थनाओं में अलग अलग प्रकार की ये भक्त की इच्छा को प्रकट किया जाता है। तो भौतिकवादी क्या करते हैं? भगवान के पास आके, हे भगवान मुझे ये देना। नहीं, डायरेक्टली वो नहीं। क्या है? सबसे पहला शरणागति, उसके बाद भगवान का गुणगान, तीसरा बात क्या है, अपनी अयोग्यता, अपनी दीन अवस्था, और चौथी चीज़ क्या है, अपना इच्छा को प्रकट करना। तो हम ये प्रार्थनाओं में भी देखते हैं कि कुछ ऐसे जो श्लोक हम आगे पढ़ रहे थे, एकदम सिमिलर श्लोक है। आपको कुंती महारानी की प्रार्थना में नव पंकज नाभाया नव पंकज मालिने वो श्लोक आता है, तो आगे के बाद कुछ श्लोकों में यही आता है कि नमक कमल नाभाया नमक कमल मालिने नमक कमल पादाया नमस्ते कमलाक्षणे। तो सिमिलर श्लोक है, लेकिन अंत में ये जानना चाहिए कि सारे प्रार्थनाओं में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक ही जैसा फॉर्मेट रहता है। ये ट्रेडिशन है। ये क्या है? सबसे पहला शरणागति, शरणागति और भगवान का गुणगान, भगवान के गुणगान के बाद अपनी अयोग्यता का प्रकट करना, और अंत में हाँ अपनी इच्छा को निवेदन करना। तो ये स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन फिर भी भले एक ही प्रकार का फॉर्मेट, एक ही प्रकार का शब्द है, ऐसा लग सकता है, लेकिन फिर भी अंतर है। क्या अंतर है? अंतर किस में है? वो अंतर है भक्त भगवान के प्रति जो भावना को प्रकट करता है तो अलग अलग प्रकार प्रकट करता है। कुंती महारानी का जो भगवान के प्रति संबंध है वो अलग है, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति भावना है वो अलग है, तो वो भावना को प्रार्थना के रूप में प्रकट करती तो अलग प्रकार दिखाई पड़ता है। जो गजेंद्र उनका भगवान के प्रति जो भावना है वो अलग है, जब उनको प्रकट किया जाता है वो अलग प्रकार रहता है। सो देयर इज ए दो द कलर इज द सेम द शेड्स आर डिफरेंट विद इन द प्रेयर। ये पहली बात हमको ध्यान में रखना चाहिए जब प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं। तो खास करके आज के श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि क्लेश विनाशनाय, सारे क्लेशों को नाश करने वाले हैं। तो ये क्लेश असलियत में भक्तों का क्लेश होता ही नहीं है, देयर इज नो क्लेश ऑफ अ डिवोटीज। वो कभी सोचते नहीं कि मैं दुखी हूँ। अगर उनका क्लेश है तो क्या है? वो भगवान का विरह का क्लेश है। ये वास्तविक क्लेश है भक्तों का, हाँ, दिस इज द रियल क्लेश। जैसे प्रभुपाद जी भगवद्गीता के उस श्लोक में तात्पर्य लिखते हैं, परित्राणाय साधुनाम, हाँ, क्लेश विनाश है मतलब परित्राणाय साधुनाम, भक्तों का क्लेश नाश करने के लिए, साधुओं का क्लेश को नाश करने के लिए, परित्राण करने के लिए आते हैं। हाँ, साधुओं के लिए, भक्तों के लिए संसार से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो सांसारिक दुख है वो साधुओं को भक्तों को कुछ इफेक्ट ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी भक्त लोग दुख को अनुभव करते हैं। क्यों अनुभव करते हैं? किसका कौन सा दुख को अनुभव करते हैं? भगवान से जो विरह का जो दुख है उसको अनुभव करते हैं। तो भगवान इसलिए प्रकट होते हैं ताकि ये भक्तों का जो विरह का जो दुख है उसको नाश करने के लिए वो प्रकट होते हैं। दैट इज द मेन रीजन। जय श्री राधा गिरिधारी भगवान की। तो ये मुख्य कारण है कि किस प्रकार ये भक्तों के अंदर जो विरह का जो अग्नि है, उससे उत्पन्न हुआ जो तप है, उसके उत्पन्न हुआ दुख है, उसको नाश करने के लिए उनके अंदर, उसके ऊपर बारिश गिरा के उनका जो विरह का जो अग्नि को बुझाने के लिए भगवान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि क्लेश विनाशनाय। दूसरे लाइन में देखते हैं कि निरूपित उदार गुण अव्यय, ये निरूपित है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो शब्द है इस पूरा श्लोक में, जो दूसरे लाइन में पहला शब्द है निरूपित, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इस श्लोक में। क्योंकि आजकल के लोग सोचते हैं कि मैं वेदों के ऊपर रिसर्च करूंगा, वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ, लेकिन प्रभुपाद इसको पूरा खंडन करते हैं। व्हाई रिसर्च ऑन वेदस? ऑलरेडी एवरीथिंग इज बीन सर्च्ड एंड द कंक्लूशन इज गिवन। सब कुछ पहले से खोज करके पूरा सार रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अभी रसगुल्ला बना हुआ है, सब कुछ फर्स्ट क्लास बना हुआ है, आपके सामने रखा है, तो क्या करना चाहिए? उसको खाओ, जस्ट एक्सेप्ट इट। नहीं नहीं, मैं उसको रिसर्च करूंगा, उसके अंदर कितना शक्कर है, क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। ये जो रिसर्च शब्द है बाहरी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन असलियत में ये हमारे अंदर जो भावना है कि मैं अपनी मन और बुद्धि के द्वारा भगवान को जानूंगा, मैं अपनी क्षमता के द्वारा भगवान को जानूंगा, मैं अपनी योग्यता के द्वारा भगवान को अपने छोटे से इस मस्तिष्क में रखूंगा। प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं कि डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी। डॉक्टर फ्रॉग मतलब वो क्या, डॉक्टर कोई बनता है जो रिसर्च करता है। तो इस प्रकार की जो रिसर्च करने की जो प्रवृत्ति है, ये अस्तित्व में ये भौतिक बुद्धि का क्लेश है। हाँ, ये तमस बुद्धि का कारण की वजह से वो रिसर्च करते हैं। एक्चुअली देयर इज नो नीड फॉर एनी रिसर्च, जस्ट एक्सेप्ट द वेद एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भगवद्गीता एज इट इज, देयर इज नो नीड फॉर एनी रिसर्च। रिसर्च का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एवरीथिंग इज निरूपिता, पूर्वैर पूर्वतरम कृतम, जैसे पूर्वज ने किया है वैसे ही करो। महाजनेन गतास पंता, हमको कुछ अलग से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर बुद्धि है तो क्या करें? हाँ, इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है, तो इंद्रियां हैं तो क्या करें? तो उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन आपके पास मन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास इंद्रियां हैं, उनका प्रवृत्ति तो जरूर रहे स्वाभाविक तरीके से। क्या करोगे? उन सबको भगवान की सेवा में लगाओ। अस्तित्व में ये जो बुद्धि है, ये तमस है, ये अज्ञान है, ये जो इंद्रियां हैं, ये शरीर है, अज्ञान संभूतम, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है, तमस से उत्पन्न होता है। तो क्या करें फिर इस अवस्था में? अगर ये है तो पाप से भरा हुआ इंद्रियां, पाप से भरा हुआ मन है, उन सबको भगवान की सेवा में लगाओ। ये करने से क्या होगा? हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगे। जब इंद्रियां शुद्ध होंगे स्वयं एव ही स्फुरत्यतः। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभुपाद इस तात्पर्य में कोट करते हैं। अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवोन्मुखे जिह्वादो स्वयं एव ही स्फुरत्यतः। इंद्रियों के द्वारा भगवान को जाना नहीं जाना जा सकता है, लेकिन सेवा के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। बाय सर्विंग कृष्णा यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट हिम। तो अपनी बलबूते नहीं जाना जा सकता। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति है, तो उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या करना है? बस जस्ट गो एंड सर्व हिम। जब वो प्रसन्न है अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। तो ये स्वयमेव स्फुरत्यतः, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हाँ, स्वयमेव स्फुरत्यतः, अपने आप जो हमारे हृदय में जो ज्ञान है भगवान प्रकाशित करते हैं। हाँ, जैसे यस्या देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्याते कतियायते ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये वेदों का ज्ञान मैं जानूंगा, मैं और सीखूंगा। ये जो प्रवृत्ति है ये भौतिक प्रवृत्ति है। दिस इज नथिंग लाइक मैं और जानूंगा, मोर। ये जो ज़्यादा जानूंगा, ज़्यादा इकट्ठा करूंगा, एक इन्फॉर्मेशन के लिए लागू है। अंग्रेजी में दो शब्द है, एक है नॉलेज, दूसरा है इन्फॉर्मेशन। नॉलेज मतलब ज्ञान, इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। तो वेदों के बारे में जानकारी हो सकता है, लेकिन वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सेवा करना पड़ेगा। भगवान के बारे में जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि ये है, लेकिन भगवान को जानना मतलब उनके साथ संबंध को जानना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास करके जानना, ये तभी संभव है जब भगवान प्रसन्न है हमसे और भगवान का विशेष कृपा है। तो ये बातें के द्वारा हमको ये मालूम पड़ता है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दोनों बातों को प्रस्तुत करते हैं। एक, इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है, और साथ साथ में दूसरे बात, इंद्रियों के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। किस रूप में? जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते हैं, बल्कि उस सेवा के द्वारा भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो ये अचिंत्य भेद अभेदत्व, यू शुड टू सी द डिफरेंस एंड द नॉन डिफरेंस। हाँ, एक प्रकार एक चीज रहता है, दूसरे प्रकार दूसरा चीज रहता है। इस प्रकार का अनुमय करते हुए, हाँ, इसको हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि कोई भी वैदिक शास्त्र अगर कोई टीचर पढ़ाता है, वो पढ़ाने से पहले उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। खास करके वेदांत सूत्र का जब ट्रेनिंग दिया जाता है, हाँ, शिष्य को पढ़ाया जाता है, जो गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला कुछ 4-5 महीना तक उनको एक्सरसाइज दिया जाता है। किसमें एक्सरसाइज दिया जाता है? ये समन्वय आदि करना, इसके ऊपर एक्सरसाइज दिया जाता है। उनको बोलते हैं एक जगह एक बात बोलते हैं, दूसरी जगह दूसरी बात बोलते हैं, अब ढूंढो, हाँ, इसको इस दोनों के बीच में दोनों सही है करके स्थापित करो। तो शिष्य परेशान हो जाता है, उधर जाता है। तो अल्टीमेटली उसको या तर्क के द्वारा हो, या ग्रामर के द्वारा हो, या निरुक्ति के द्वारा हो, या अपनी अनुभूतियों के द्वारा हो, आचार्यों के कथनों के द्वारा हो, कैसे भी करके वो शिष्य का कर्तव्य होता है या उस शिष्य का ड्यूटी होता है ट्रेनिंग पीरियड में, वो दोनों के बीच में अन्वय करके देखना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अरे एक जगह एक बता, एक जगह एक है, क्या है वो, तो कन्फ्यूजन रहता है। तो हम आगे जाते हैं, हाँ, कि किस प्रकार मनोवचो वेग पुरोजवाया। हाँ, मनोवचो वेग पुरोजवाया, भगवान अपने मन और वचनों से ज़्यादा तेज चलते हैं। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपद सीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामे। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि मुनियों का मन के वेग के वेग से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मुनि लोग हजारों करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं मन की वेग से भगवान को प्राप्त करने के लिए, मन की वेग से प्राप्त करने के प्रयास करते, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी क्या है, भगवान का जो चरण कमल है उनके जो सीमाएं हैं, हाँ, उनके बाहर ही रहते हैं, वो उनके चरण कमलों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस बात को इस श्लोक में बताया गया है, सर्वाक्ष मार्गे अगताध्वने नमः। तो बाकी सब जितने मार्ग है भक्ति के अलावा, बाकी सब मार्गों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। एकमात्र मार्ग है वो है भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो ये है आज का श्लोक का तात्पर्य। आज दो महत्वपूर्ण आचार्यों का तिरोभाव दिवस है, तो भक्तिनाथ ठाकुर और गदाधर पंडित, उनके बारे में हम बस 3-4 मिनट चर्चा करेंगे, उसके बाद क्योंकि आज महत्वपूर्ण मीटिंग है उसके लिए हमको जाना है। तो भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में दो, उनके सारे कार्यकलापों में दो महत्वपूर्ण कार्यकलाप है या विशेष योगदान है। एक है भक्तिनाथ ठाकुर के समय, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के समय बंगाल में वैष्णव मतलब भिखारी, बेगर। लोग मान लीजिए घर में कोई, आजकल रिजल्ट निकला है ना, तो घर में कोई लड़का फेल हो जाता है एग्जाम में, तो बोले वैष्णव बन जाओ, तुम कोई काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है, चलो वैष्णव बन जाओ तुम। क्या नहीं, रास्ते में जाओ, भीख मांगो, भीख मांग के खाओ, अपना धन अपना जीवन व्यापन कर लेना। तो ये वैष्णव का डेफिनेशन इतना नीचे हद तक गिर गया था उस समय समाज में, लोगों की दृष्टिकोण में। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर ने इस प्रकार की जो गलत धारणा है उनको लोगों के मन से निवारण किया। बड़े बड़े जो स्कॉलर्स और विद्वान थे, भक्तिनाथ ठाकुर का नाम सुनते हुए डर जाते थे, क्योंकि इतनी उनका विद्वत्ता है। और उन्हें स्थापित किया अस्तित्व में वैष्णव मतलब द टॉप मोस्ट इन द सोसाइटी। लोगों की धारणा क्या था, वैष्णव मतलब समाज में सबसे निकृष्ट है, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर की वजह से समाज में इवन जो पाश्चात्य देश के जो विद्वान थे उनके मन में भी उन इस प्रकार का गलत धारणा था, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर की वजह से उन लोगों की दृष्टिकोण में भी, समाज के दृष्टिकोण में भी सब लोग वैष्णव मतलब अभी तब से इज्जत देने लगे। नहीं तो पहले कोई स्वीकार ही नहीं करता था वैष्णव मतलब, ये उनकी ग्रंथों के द्वारा, अलग अलग प्रकार के ग्रंथों के द्वारा उन्होंने स्थापना किया। और दूसरा कार्य भक्तिनाथ ठाकुर का वह है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो असली जो जन्म स्थान है उसका उन्होंने प्रकट कराया। और भक्तिनाथ ठाकुर का हम लोग प्रणाम मंत्र भी करते हैं, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते नमः, नमो गौर किशोराय, सॉरी वट इज इट ना सच्चिदानंद नामिने, नेक्स्ट लाइन इज गौर शक्ति स्वरूपाय, गौर शक्ति स्वरूपाय। ये भक्तिनाथ ठाकुर कौन है, गौर शक्ति का वो उनका मूर्तिमान स्वरूप है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का शक्ति क्या है, वट इज गौर शक्ति, गौर करुणा, उनका करुणा का जो शक्ति है उनका स्वरूप। और करुणा के द्वारा क्या होता है, विश्व भर में भगवान का नाम का प्रचार। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना करने का जो शक्ति है असलियत में मुझे श्री भक्तिनाथ ठाकुर से मिला है, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत और उनकी जीवनी के बारे में जो पहला अंग्रेजी किताब है उन्होंने लिखा था। हाँ, और उस किताब को उन्होंने 1896 में लिखा, और उस किताब को उन्होंने लिख के लाइफ एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु लिख के उस किताब को उन्होंने अंग्रेजी में लिख के सबसे पहला जो कॉपी है उन्होंने भेजा था कनाडा में, एक लाइब्रेरी में भेजा था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब इस बात को कहते हुए उसी साल में हमारा भी जन्म हुआ, तो असल में भक्तिनाथ ठाकुर का इच्छा था कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का वाणी है अंग्रेजी में अनुवाद हो और पाश्चात्य देश में उसका प्रचार हो। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने ये कार्य के द्वारा और उसी 1896 में किया और उसी साल में हमारा जन्म हुआ। तो उनका ये जो छोटा सा कार्य, उनका जो ये छोटा सा इच्छा था, उन्होंने इस इच्छा के साथ उस शक्ति को भी हमको प्रदान किया ताकि हम इस कार्य जो उन्होंने संकल्प किया था हम उसको पूर्ण कर पाए। तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि भक्तिनाथ ठाकुर गौर शक्ति स्वरूप है। और गदाधर पंडित के बारे में और दो मुख्य बातें हम चर्चा करेंगे। गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी का आवेश अवतार है, नॉट फुल श्रीमती राधा रानी, उनका आवेश माना जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी लोग अलग अलग प्रकार के रसों को आस्वादन करते थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अगर माधुर्य बहिरंगिक रूप में नहीं बल्कि गौण रूप में वो आस्वादन करने वाले एकमात्र भक्त थे, वो है गदाधर पंडित, क्योंकि वो राधा रानी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को वो हमेशा माधुर्य के दृष्टिकोण से वो देखते थे। और गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों बचपन से ही, यानी उनकी बाल लीलाओं, बहुत मधुर मधुर बाल लीलाएँ हैं उनका। और गदाधर पंडित के बहुत निकटवर्ती मित्र है मुकुंद दत्त। मैंने पहले भी चर्चा किया पुंडरीक विद्याधरी के बारे में चर्चा करते हुए, किस प्रकार मुकुंद दत्त जब भी कोई वैष्णव आते थे नवद्वीप में, तुरंत गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त पहुँच जाते थे। मुकुंद दत्त बोलते थे वो वैष्णव है, चलो उनसे मिलने के लिए चलते हैं। तो पुंडरीक विद्याधरी जब आए नवद्वीप में, मुकुंद दत्त और लेके गए गदाधर पंडित को। जैसे हमने सुना पहले भी, किस प्रकार गदाधर पंडित मन में आया कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये इतना भोगी व्यक्ति है, भोग विलास में युक्त है, ये व्यक्ति कैसे एक वैष्णव हो सकता है। तो मुकुंद दत्त ने जैसे मालूम पड़ा कि गदाधर पंडित के मन में इस प्रकार विचार हो रहा है, उन्होंने भागवतम का जो भगवान का औदार्य को जो प्रस्तुत करने वाला श्लोक है, अहो बकियाम, वो श्लोक है, उन्होंने उच्चारण किया। जैसे उन्होंने उच्चारण किया, पुंडरीक विद्यानिधि का हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ और सारे अष्ट सात्विक कार्य प्रकट होने लगे। तब गदाधर पंडित को मालूम पड़ा, तब उन्होंने सोचा कि ये जो मेरा मन में जो अपराध हुआ है विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, ये अपराध को अगर मुझे क्षय करना है तो मुझे उनका शिष्य बनना होगा। तो उन्होंने मुकुंद दत्त से प्रार्थना किया, वो दोनों निवेदन किया कि किस प्रकार कि पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर पंडित ने बोला कि मुझे आपका शिष्य बनना है। अभी गदाधर पंडित कौन है, स्वयं राधा रानी का अवश्य है, तो बोलते हैं कि मुझे शिष्य बनना है। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोले कि अस्तित्व में ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो गुरु क्या बोलते हैं शिष्य को, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हारा जैसा मुझे एक शिष्य मिला। अस्तित्व में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत और गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का कथन, उनका लीला है, हमको बार बार इस प्रकार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतना मधुरता, इतना सिद्धांत है, तो हम अस्तित्व में अंदाज भी लगा सकते हैं। और गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के इतने करीब हो चुके थे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से निकल के जगन्नाथपुरी गए, उधर भी उनके साथ में ही थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सोचे नहीं मैं अभी वृंदावन जाना है प्रचार करने के लिए, गदाधर पंडित बोले मैं भी साथ में आऊँगा, तब उन्होंने आदेश दिया अभी तुम इधर ही रहो, तुम जगन्नाथपुरी में क्षेत्र संन्यास लेकर रहो। इसलिए गदाधर पंडित की बहुत सारे लीलाएँ उधर नवद्वीप में, सॉरी जगन्नाथपुरी में, क्योंकि वो क्षेत्र संन्यासी है, हाँ वो उधर ही रहते थे और संन्यास का व्रत पालन करते थे। और हमेशा टोटा गोपीनाथ जो डेटी है, जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हो गए, वो विग्रह को, टोटा गोपीनाथ को देखभाल करते थे। तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सुंदर लीला है, जिस प्रकार वो बुढ़ापे में वो खड़े नहीं हो पाते थे, तो भगवान से प्रार्थना किया मैं खड़े होकर नहीं हो पा सकता, तो आप इतने लंबे हो तो मैं ड्रेसिंग कैसे करूँगा। टोटा गोपीनाथ बैठ गए उनके लिए, तो ही सैट डाउन। तो गदाधर पंडित का और भी बहुत सारे अद्भुत लीलाएं हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये पंच तत्व में एक है गदाधर पंडित, ये पंच तत्व में जो पहले तीन है वो विष्णु तत्व है, बाकी दो है वो दोनों जीव तत्व बोलते हैं कुछ लोग, बाद में कुछ लोग बोलते हैं एक है राधा तत्व शक्ति तत्व, और दूसरा है पाँचवें हैं श्रीवास ठाकुर जो है वो जीव तत्व, नारद का शक्तावेश बोलते हैं। पर अल्टीमेटली ये जाना चाहिए कि हम लोग आज जो उपवास रख रहे हैं वो गदाधर पंडित के तिरोभाव के वजह से नहीं रख रहे उपवास, किसके लिए रख रहे, भक्तिनोद ठाकुर का तिरोभाव की वजह से। वी आर ओनली फास्ट ऑन विष्णु अपियरेंस डे ऑफ वैष्णव दिस थिंग। और हम ये भी देखते हैं कि भक्तों का जो आविर्भाव तिरोभाव दोनों मनाया जाता है, लेकिन भगवान का तिरोभाव करके कुछ होता नहीं है, मनाया नहीं जाता ऐसा कुछ हमने सुना नहीं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये तीनों कौन है, विष्णु तत्व है। इसलिए वी आर सेलिब्रेट द अपियरेंस डे। गदाधर पंडित वो विष्णु तत्व के अंतर्गत नहीं आते, तो इसलिए वी सेलिब्रेट इस डिसअपियरेंस डे ऑल्सो। और फास्टिंग किसके लिए है, हमारा भक्तिनोद ठाकुर का, इसके लिए कर रहे हैं, बिकॉज ही कम्स अंडर आवर परंपरा। तो ये है कुछ बातें जो हमारे मन में सूझा था। तो अभी हमारा एक मीटिंग है, इष्ट गोष्ठी है भक्तों के साथ प्रसादम हॉल में, तो कोई टीका टिप्पणी कुछ है तो एक दो यू कैन टेक।